مشورے کا لینا. مشورہ لینا کس سے چاہیے؟ اس سے اہل, یعنی کوئی کام بغیر مشورے کے کرنا نہ چاہیے, ہر ایک سے نہ لینا چاہیے. جیسے خواب کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو ہر ایک کو نہ سنائے. اس وقت میں ایسے ہی وہ اوقات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کسی شیخ کو, کسی عالم ربانی شیخ, یہ بھی دینی مشیر ہوتا ہے کہ انسان اپنی رہبری کے لیے, اپنی دینی ترقی واقعات میں اس سے مشورہ کرتا ہے. اگر کوئی خواب دیکھے تو انسان کسی سے ذکر نہ کرے, اس کی تعبیر کا بھی اعتبار ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنا خواب ہر ایک کو نہ سنانا چاہیے. اس طریقے سے مشورے کا ہر ایک کوئی آدمی اہل نہیں ہے. اس کے لیے بھی شرائط میں سے ہے کہ وہ متقی ہو, نیک صالح ہو, ہمارا خیر خواہ ہو. اور تقوی کی برکت, اصل میں تقوی وہ صفت ہے کہ جس کے اندر تقوی کی صفت ہوتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا باوفا ہے وہ ہمارا کیسے نہ ہو. لہٰذا میرے مرشد نے سنا ہے کہ یہاں پر تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے اندر امریکی کوئی کمپنی آئی, اس کو اپنے آفس میں لڑکے بھرتی کرنے تھے. حضرت کے پاس آنے والے ایک صاحب, ماشاءاللہ ظاہر و باطن خوب صحبت کا اثر, تو انہوں نے سنا ہے کہ وہ ان کا انٹرویو تھا, جیسے دعا کرا کے گئے انٹرویو کے لیے گئے تو وہاں 3-4 آدمی داڑھی والے تھے. تو اس کمپنی نے کہا کہ ہم تمہیں تمہاری کوالیفیکیشن بالکل ٹھیک ہے اور ہم رہو بالکل صحیح, ہم تمہیں رکھ لیں گے, لیکن شرط یہ کہ داڑھی کاٹ دو. روز آ جاؤ, کل آ جاؤ اور ہم تمہیں وہ کرتے ہیں. تاکہ فرمایا کہ ان میں سے جو تھے رہتے, انہوں نے کہا جی داڑھی نہیں کٹے گی آپ کو, جو کہا بھائی کل آنا کل. اب اس میں وہی ہے کہ داڑھی تو رکھ لی لیکن شیخ اور مہربر اور مربی سر پر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے داڑھی کاٹ دی تھی, جو تعلق والے تھے انہوں نے داڑھی نہیں کاٹی, وہ ایسے ہی دوبارہ چلے گئے. پوچھا کہ بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں کاٹی؟ بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نے داڑھی رکھی ہے, اس میں تمہارا حکم نہیں چلے گا. ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے داڑھی رکھی ہے, لہذا نوکری دو یا نہ دو یہ داڑھی نہیں کٹے گا. اور وہ جو تھے جنہوں نے داڑھی کاٹ لی انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اب آپ عیسائی کو دیکھیں کیا نظر اس کی. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہارے کہنے پر تو داڑھی کاٹ دی اور اب تم ملازمت کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا بات یہ کہ جو اللہ کا نہیں ہو سکتا, جو اپنے خدا کا نہیں, وہ ہمارا کیسے باوفا ہوگا؟ یہ کہہ کے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو رکھ لیا. لہٰذا ایسے ایک صاحب امریکہ کے اندر, وہ اس نے ماسٹرز کیا اور بہت اعلی ڈگری, بہت اچھے نمبروں سے پوزیشن ہولڈر, امریکہ کے ایک دفتر میں گیا تو اس نے سب کہا کہ تمہاری کوالیفیکیشن ٹھیک, بس وہی داڑھی پر اعتراض, کاٹ دو ملازمت پر آ جاؤ. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, داڑھی نہیں کٹے. باہر نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھوٹی تصویر بنائی ہوئی ان لوگوں نے, وہ جھوٹی تصویر ہے, فرضی, لیکن اس میں بھی داڑھی ہے, داڑھی اس میں بھی عجیب بات. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوچھے یہ کون ہے, اس نے اسی مینیجر سے پوچھے یہ کون ہے, کہا یہ ہمارے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام, جیسس بولتے ہیں نا. تو کہا کہ اگر مان لو یہ تمہارے پاس ملازمت کے لیے آ جائے تو کیا تم ان کو داڑھی کاٹنے کا بولو؟ مینیجر اس کی شکل دیکھنے لگا, اس نے کہا تم ٹھہرو. جنرل مینیجر تھا, اس نے اسی وقت اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر کو فون کیا. اس نے کہا سر ایسے ایسے ایک نوجوان آیا, ایسے ایسا معاملہ ہو, اس نے یہ بات بولی. اس نے کہا اس کو ٹھہرو, اس کو روکو, میں خود آ رہا. وہ ڈائریکٹر آیا, یہ بات اس کے سامنے کی. اس نے کہا اسی وقت اس نے کہا کہ یہ لو تمہیں ملازمت پکی ہے تمہاری. یعنی بندہ اللہ کا بن کے رہے. حدیث شریف میں آتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. मेरे मुर्शिद ने एक बात और सुनाई थी कि अखबारों में ये खबर आई थी, ये भी पुरानी बात है कि एक सिख ने अमेरिका की फौज में दरखास्त दी। तो फौज में जो अफसर था उसने कहा कि दाढ़ी काटो, इसके बगैर मुलाजमत नहीं। तो दाढ़ी उनके यहां मजहबी शियार है, पगड़ी दाढ़ी वो हाथ में कड़ा और कृपान यानी खंजर, ये उनकी अमात में से। तो उस सिख ने अमेरिका के सदर को, उसको अल्बर्ट सदर निक्सन का जमाना था, पुराना जमाना, उसको सदर को उसने तार भेजा, पहले तार का सिस्टम था, उसने तार भेजा कि मैं जो है 6 फुट का आदमी हूं और मेरा 80 किलो वजन है, मैं अमेरिका की खिदमत करना चाहता हूं फौज के जरिए से, जब मैं अपना 2 वजन लेकर दौड़ सकता हूं तो ये छटाक भर की दाढ़ी मेरे दौड़ने में क्या रुकावट बनेगी। कि सदर को खत लिखकर, सदर ने उसको मुस्तस्ना किया, एग्जामिशन दिया, उसको रख लिया। मेरे मुर्शिद ने रोते हुए फरमाया देखो वो सिख है, बातिन फिरका है, लेकिन अपने गुरु की मोहब्बत को कहता है कि मुझे गुरु से मोहब्बत है, लादा वो सारे आलम में तैयार नहीं है। आप भी देखें, आज भी देखें, नजर आएगा वो जा रहा हुआ ऐसे करके, और वही पगड़ी वही दाढ़ी जो अपना मजहबी शहर है, वो क्यों सब उसको कुछ कहो कि सरदार जी माशरा कहाँ जा रहे हैं, माशरा जाए भाड़ में, ऐसे बोलता है वो। मेरे मुर्शिद फरमाते देखो वो अपने गुरु से मोहब्बत की वजह से सरदार बन गया, लोग उसको सरदार बोल रहे, और मुसलमान अपने गुरु अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न आने की वजह से सरेदार है, यानी फांसी पे चढ़ा है। तो बहरहाल मशवरा बड़ी अहम चीज है, इससे कल्ब को एक अजीब कुव्वत मिलती, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी। और फिर सुलहा का मशवरा, उसमें दर हकीकत उनके तकवा का नूर भी शामिल होता है, इसलिए वो जो मशवरा देंगे उसमें यह होगा कि उसके लिए खैर खाई होगी। इसलिए क्या फरमाया, और मशवरे का हुक्म यही है कि मशवरा वही दे जो अपने लिए पसंद करता है, और जो बात समझ में ना आती उसको साफ कर देगी जनाब हम ये बात मालूम है। और मशवरे का हुक्म यह भी है, अगर मशवरा किसी ने से लिया, मशवरा लिया, उसने मशवरा दिया, तो मशवरा देने वाले के जिम्मे ये नहीं है कि उसको कह के नहीं तुम इस पर अमल करो, और मशवरा लेने वाला उसके मशवरे के खिलाफ कर सकता है, ये शरई मसला है, इसलिए ये इसके अंदर है कि उसके खिलाफ कर सकता है। लेकिन ये पाबंद किया है कि मां रूमी फरमा रहे हैं यही कि देखो जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मशवरा करो, यानी इतनी अहम चीज है, लेकिन अरज कर दिया कि मशवरे के अहल कौन लोग हैं, सुलहा नेक लोग मुत्तकी लोग, ये मशवरे के अहल है, हर एक से मशवरा न करना चाहिए, क्योंकि ये जो मशवरा देंगे तो इसके अंदर दुनिया से ज्यादा ये आखरत की फिक्र रखेंगे, दुनिया के साथ साथ आखरत को भी ये मद्देनजर रखेंगे, और अगर दुनियादार से मशवरा किया वो दुनिया को ही देखेगा, दुनिया के आंधी नफे और माली मनफात को देखेगा, और ये अल्लाह वालों से मशवरा करेगा तो वो आर्दी नफे के साथ साथ दायमी नफे को भी मद्देनजर रखेगा। इसलिए हुक्म है मशवरे का। मारूमी फरमाते हैं खिरदाचू मसाबिह अनवरस बिस्त मिसबा अज्य के रोशन तरस, फरमाते ये अक्ल मिस चला के रोशनी रखती है, इन अक्लों में भी रोशनी यानी नूर होता है, और जाहिर है कि एक चराग की रोशनी से 20 चराग की इज्तमाई रोशनी ज्यादा और कवी जुन नूर होगी, यानी एक तो एक चराग है और 20 चराग मिलकर कितनी रोशनी उसकी बढ़ जाएगी, 20-20 वाट के अगर मेरे मुर्शिद फरमाते 20 बल्ब हो गए तो नतीजा क्या होगा कि उसकी रोशनी 400 हो गई। फरमाते यही सूरत ताजगी ईमान की है कि जब कोई मोमिन ज़ईफुल ईमान जिसका ईमान कमजोर हो, दूसरे मोमिन कवीउल ईमान और साहिब यकीन यकीन कामिल की सोहबत में बैठता है तो कवी ईमान की रोशनी से ज़ईफ ईमान की रोशनी भी कवी तर हो जाती है। सुभान अल्लाह, जी वाकया लिखा कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या मेहमान हुए, जब वो अपनी इबादत नाफिला के लिए उठने लगे तो मेजबान साहबी ने फरमाया कि इजलिस बिना नुक्मिनु साअतन मेरे पास बैठो, हमारे साथ कुछ देर तशरीफ रखिए, हम कुछ देर आपसे अपने ईमान को ताजा करेंगे। तो देखिए एक साहबी दूसरे साहबी से क्या कह रहे हैं कि आप हमारे साथ थोड़ी देर तशरीफ रखिए कि आपकी सोबत से हमारे ईमान में ताजगी होती है। तो पता ही चला ये सोबत इतनी चीज है कि दादा, इसलिए वो अपनी इबादतें नाफिला के उठने लगे थे। तो लादा इससे ये पता चला कि अल्लाह वालों की सोबत अगर मुयसर हो, शेख की सोबत अगर मुयसर हो, तो अपनी अपनी नफली इबादतों पर उसको तरजीह देना चाहिए। बहर ई कर्द मना आबाश को अस्तराहुक वजे शुदन खलवत बको, फरमाते इसी सबब से इस बाश को जाते गिरामी सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत को और खल्क से दूर भागकर पहाड़ और जंगल में खलवत नशीन हो जाने को ममनू फरमा दिया कि भागो मत। क्यों? क्योंकि सालेहीन का गिरोह वहां कहां मिलेगा और इसी वजह से हमेशा ज़ईफुन नूर रहेगा, बल्कि अंदेशा है कि ये टिमटिमाता हुआ चराग भी गुल हो जाएगा, इसलिए मना किया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन सकनल बादिया फकत जफा, जिसने गांव में सुकूनत इख्तियार की उसने अपनी जान पर जुल्म किया। क्यों? क्योंकि वहां सौदत सालिहीन नहीं मिलेगी, उलमा की सौदत नहीं मिलेगी, नतीजा ये होगा बस खेती बाड़ी में हर वक्त लगा रहेगा। और सोहबतों से, उलमा की इल्म से अल्लाह वालों के कल्ब के नूर से महरूम रहेगा, इसलिए आपने फरमाया उसने अपनी जान पर जुल्म किया। मन सकनल बादिया फकत जफा, कि जिसने गांव में सुकूनत इख्तियार की उसने अपनी जान पर जुल्म किया। इससे भी यही इशारा है कि सोहबत सुलह की क्या अहमियत है। फरमाते राह सुन्नत बा जमात खुशबूवत अस्पा अस्पा यकी खुशतर रवत, और फरमाते इसी सबब से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत के रास्ता जमात के साथ अच्छा तय होता है, यानी अल्लाह वालों के गिरोह के साथ रहो तो तुम्हारा रास्ता अच्छा तय होगा। जिस तरह एक घोड़ा तनहा सफर करने से ज्यादा चंद घोड़ों के साथ उमदा और ज्यादा खुश रफ्तारी से सफर तय करता है, यानी एक घोड़ा अकेला दौड़ा और एक उसको सब घोड़ों के साथ दौड़ ले जाओ, तो नतीजा ये होगा कि उसका सफर उमदगी से तय होगा। बिलखसूस जब किसी नए घोड़े की चाल यानी रफ्तार दुरुस्त करते हैं तो उसको पुराने घोड़ों के हमरा उसको चलाते हैं, नए घोड़े को पुराने घोड़ों के साथ चलाते हैं, तो उस तरह क्या होता है वो नो आमोज घोड़ा, नया घोड़ा दूसरे घोड़ों की आवाज और टाप सुनकर खुद ब खुद आसानी अपने कदमों को उसी अंदाज पर खुश रफ्तारी का फुगर यानी आदि बना लेता है। और तनहा घोड़े को डंडे मारो कुछ करो, ये मश्क और ये तमरीन हजार डंडों की और हजार चाबुक मारने से भी उसको याद हासिल नहीं होगी। लिहाजा फरमाया कि एक तो डंडे मारकर तुम अकेले उसको तरबियत करोगे और एक ये है कि उस घोड़े को घोड़ों में डाल दो, नतीजा होगा वो भी चाल सीख जाएगा। उसी तरह जो शख्स फरमाया अल्लाह का रास्ता तनहा तय करना चाहता है, उम्र गुजर जाएगी लेकिन वो मंजिल से महरूम रहेगा, और अल्लाह वालों की सोहबत में नतीजा ये होगा कि वो आसानी से और पुल तौर पर ये रास्ता तय हो जाता है। लेकिन इंसान एक आम सफर भी करता है, अकेला सफर करे तो क्या है, सफर कटने का नाम नहीं, एक दो दोस्त साथ में हो मजे से सफर तय हो जाता है, और सफर भी मजे से पता नहीं चलता सफर का, और फायदा ये होता है कि दूसरी हिकमतें मिलती है कि नेकी में, तकवा में और कामों में सहूलत हो जाती है, बचत भी इस तरह होती है कि खाना मिलजुल कर खा लेते हैं, बचत भी इसमें इस तरह हो जाती है, रहाइश मिलजुल कर हो जाती है, तो कितने यानी दीन तो दीन दुनियावी कितने फवायद भी उसके अंदर पोशीदा है। इसलिए क्या फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता अकेले मत तय करो। फरमाते हैं कि ताना गर्दो फौत ई नौए इल्तिका का नजर बख्ते वक्सीरे बका और गैर तहक पर दाए अंगेजता सिर्फ लियो उलवी बाहम आमेखता। फरमाते रहबानियत और मुतलक खलवत नशीनी कोह बयाबान और जंगल और पहाड़ों के अंदर ममनू फरमाने का मकसद भी यही है कि ये शख्स सालिहीन की सोहबत से महरूमी का बायस हो जाता है, और नजर ने और अल्लाह वालों की नजर मकबूलाने बारगाह इलाही की नजर जिसकी तासीर यह है, कीमिया किसी तासीर है, यानी जिस तरह से कीमिया लोहे को सोना बना देता है, उसी तरह से अल्लाह वालों की नजर मिट्टी को रश के आफ्ताब बना देती है। फरमाते हैं ये इस चीज से तन्हा रहने की वजह से इस चीज से महरूम रहता है। لہذا فرماتے ہیں غیرت حق نے امتحان کے لیے پردہ ڈال دیا اور نیکوں کو اور بدوں کو دنیا میں مخلوط رکھا ہے، یعنی نیک اور بد دنیا کے اندر ملے ہوئے ہیں. یہ امتحان ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں گروہ اسی زمین پر ملے جلے زندگی بسر کرتے ہیں. اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ والا ہے کیا. فرماتے بس یہی چیز کیسے پتہ چلتی ہے؟ اہل بصیرت مقبولان الہی پہچانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ قدر مجذوب کی خزانے خدا سے پوچھو. شورہ عام ایک قسم کی رسوائی ہے. قدر مجذوب کی خزانے خدا سے پوچھو. اس لیے شیخ کامل کی نشانیوں میں سے بھی یہ نشانی ہے کہ اس وقت کے علماء اور انصاف پسند اہل بصیرت اہل فہم سمجھدار لوگ اس شیخ کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے، شیخ کامل کی نشانیوں میں سے. اور جس سے علماء وحشت کرے اور کہے کہ یہ شخص ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چاہے اس کے پاس کتنا بڑا مجمع لگا ہوا، لیکن میرے پیارے دوستو وہ مقبولیت کی نشانی نشتا، مقبولیت کی نشانی نہیں. اللہ ہم سب کو از صحبت اہل اللہ اور ان کے مشوروں سے اپنے قلوب کو منور، ان کی صحبتوں سے اپنے دل کو نور، اور اپنے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کر